हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गुरुदेव और परम गुरुदेव और परंपरा के असीम कृपा से अभी हम इस दिव्य स्थान में आए हैं। जब ब्रज में हम घूमते हैं तो चारों तरफ से कृपा से घिरे हुए रहते हैं, चारों तरफ से। देखो पीछे कल्पवृक्ष है, सामने कल्पवृक्ष है, बाजू में गोविंद कुंड है, उसके आगे श्री गिरिराज विराजमान है, पीछे माधवेंद्रपुरी जी की बैठक है, वल्लभाचार्य की बैठक है, राइट साइड में राधा गोविंद देव का मंदिर है, ले लो उसको, राइट में राधा गोविंद देव का मंदिर है, इतना सुंदर, चारों तरफ से वृंदावन धाम के असीम कृपा से हम घिरे हुए हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद में ऐसा मौका मिलता है, लेकिन होता यह है कि जन्म जन्मांतर में हम पुण्य तो कर लेते हैं, जब उसका फल प्राप्त होता है तो हमारी चेतना कहीं और रहती है, जब उसका लाभ मिलने वाला होता है तो क्योंकि हमारी चेतना उस समय सही जगह पर नहीं रहती है इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी ऑलवेज स्पिरिचुअली अलर्ट, सेंसिटिव, रेडी टू ग्रैब, परसीव मर्सी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग चार नियम का पालन करते हैं। मराठी में एक शब्द है बोथट, जगह है ब्लंट। जब हम लोग इंद्रिय भोग करते ना तो हमारी इंद्रिय जो है एकदम ब्लंट हो जाते हैं, शार्प नहीं होते, लेकिन जब इंद्रिय भोग छोड़ने के नियम पालन करते हैं तो हमारी इंद्रियां बहुत शार्प हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती है। तो जब इंद्रियां और अधिक अधिक स्वच्छ हो जाती हैं तो भगवान की कृपा को और अधिक अच्छी तरह से हम ग्रहण करने में सफल हो जाते हैं, और उसके लिए संतों का संग जो है बहुत आवश्यक है। संतों के सान्निध्य में ये जल्दी जल्दी होता है, आसानी से होता है और तेज़ी से भी होता है। तो इसलिए सबसे पहले गुरुदेव परम गुरुदेव सबको धन्यवाद करूँ, कृतज्ञतापूर्वक भगवान के भक्तों को संतों को धन्यवाद करूँ, क्योंकि उन्हीं के कृपा से हम ऐसे जहाँ स्थान पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। सब लोग अभी एकाग्र होकर कथा सुनिए। श्री गोवर्धन मोर के आकार में हैं, उनकी दो आंखें राधा कुंड श्याम कुंड है, उनकी गर्दन जो है वो दान घाटी है, उनका हृदय कुसुम सरोवर है, और यहाँ से आगे वो इससे सबसे बड़े गिरिराज जी आपको यहीं पर दिखाई पड़ेंगे, और इतना सन्निध्या में उनका दर्शन इतना और कहीं पास में नहीं होता है। इसके आगे जाएंगे तो फिर वो और छोटे होकर उसका समाप्ति आ जाती है, उसको पूछरी कहते हैं, पूछरी, जैसे मोर की होती है ना पूछरी, तो लास्ट है, वहाँ से हम लोग गोल घूमते हैं, वहाँ पर अप्सरा कुंड नवल कुंड है, वहाँ पर पुचरिका लोटा बाबा का आश्रम है, मंदिर है, उसके पास में सुरवी कुंड है। केवल नाम लेने से भी पवित्रता प्राप्त होती है। अप्सरा कुंड में अप्सराओं ने भगवान के अभिषेक के लिए पानी इकट्ठा किया था। नवल कुंड में राधा और कृष्णा और गोपियां सब पिघल गई थी इस जल के अंदर। नवल कुंड के किनारे पे भगवान ने 24 अवतारों का दर्शन कराया था। 24 अपने अवतारों का दर्शन उन्होंने नवल कुंड के किनारे किया था। और वराह देव का अवतार के समय पृथ्वी को खोदा था उन्होंने। ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो ये गोविंद कुंड है। जब इंद्र ने भगवान का अपराध किया, ब्रज को बहाने का प्रयास किया, संवर्तक बादलों से घनघोर प्रलय काल के वर्षा किया, तो उस समय भगवान ने उनको अपने बाई उंगली के, बाई हाथ के आखिरी उंगली के बल से परास्त कर दिया। उनकी सबसे बड़ी शक्ति जो थी संवर्तक बादलों की, प्रलय काल में उपयोग में आने वाली सर्वोच्च शक्ति इंद्र की, वो एक वज्र है और एक संवर्तक बादल है। तो संवर्तक बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ में लगे रहे, लेकिन ब्रह्मांड को तो भूल ही जाओ, लेकिन एक गांव को, एक क्षेत्र को भी डुबा नहीं सके। ब्रज भूमि पृथ्वी का तो एक हिस्सा है छोटा सा, उसको भी नहीं डुबा सके। यहाँ तक कि वर्णन ऐसा आता है कि भगवान की कृपा ऐसी थी कि गोवर्धन के ऊपर का भी एक भी पेड़, एक भी पत्ता नहीं हिला, मतलब टूट नहीं गया। नहीं तो आखे बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं तूफान में। ये तो संवर्तक बादल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन गोवर्धन के ऊपर का एक भी पेड़, एक भी पौधा, एक भी शाखा, एक भी निकल नहीं सका। इतनी कृपा थी भगवान की, एक भी बूंद इंद्र के वर्षा का जमीन तक नहीं पहुंच सका। तो भगवान ने चक्र को बुलाया और उसको आदेश दिया कि आपको पूरी चारों ओर गोवर्धन के इस तरह से घूमना है कि एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, सब बाष्प होकर आकाश में वापस जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम छतरी पकड़ते हैं ना, तो हमारे सर पे पानी नहीं गिरता है, लेकिन साइड में पानी गिरता है और हम शायद कमर तक पानी में डूब सकते हैं। खाली सर हमारा, कंधा और सर बच रहे हैं, लेकिन भगवान ने छतरी ऐसी उठाई कि कंधे से एक भी आवाज, एक भी बूंद पानी जो है उसको नीचे नहीं गिराया भगवान ने। और ये सब लीला 7 दिन 7 रात तक चलती रही। इतनी सुंदर बात है ये कि जो एक हमारे भक्ति सिद्धांत में का बात कही गई है भक्ति के सिद्धांत में, कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को अगर बहुत भयंकर घटना भी जीवन में होती है तो उसके बीच में भी आनंद का अनुभव हो सकता है। बहुत भयंकर घटना हो रही है और उसके बीच भी आनंद का अनुभव हो सकता है। इसका उदाहरण गोवर्धन लीला है। ऐसी वर्षा हो रही है कि सर्वनाश हो सकता है, उसमें होने वाला है, लेकिन सर्वनाश होने वाली भयंकर रौद्र घटना को भगवान ने कैसे परिवर्तित कर दिया। सब इकट्ठा हो गए और ऐसी लीला हुई जो कभी पहले नहीं हुई, इतने आनंदमय। इसमें साक्य रस वाले मित्र भी साथ में हैं। साक्य रस वाले भी साथ में थे, वात्सल्य वाले भी थे, माधुर्य वाले भी थे, गाय भी थी, इतने लोग हैं, सब लोग थे उसके अंदर। आमतौर पे क्या होता है कि एक साथ में एक ही लोग रहते हैं, जैसे दिन में गौचारण में सखा और गाय रहते हैं, रात में रासलीला में गोपियां रहती हैं, घर में नंद बाबा, यशोदा माई, बड़े बड़े गोपी रहते हैं। लेकिन गोवर्धन के अंदर सब लोगों ने मिलकर लीला का आनंद लिया, सब लोग साथ में थे, और एक दूसरे से आदान प्रदान भी करें, गोपियां ग्वालों से बात कर रही हैं, ग्वाल बड़े बुजुर्ग गोपियों से बात कर रहे हैं, सब लोग सबसे आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का। ऐसा अनोखा लीला जो है वो पांचों लीलाओं के साथ वाला लीला जो है ना, वो पहले नहीं हुआ था कभी। तो एक तरफ की जानलेवा स्थिति है बहुत भयंकर, और उसी घटना में दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। मौत का डर तो दूर ही चला गया, ऊपर से आनंद का अनुभव हुआ। ये किसका प्रमाण है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद में भयंकर घटना होने पर भी दिव्य आनंद का अनुभव हो सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस ब्लिस इन द मिडल ऑफ मोस्ट मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। ये हमको घटना जो है ना आशा दिलाती है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा रखो, भजन करते रहो, आगे भगवान संभाल लेंगे सब। तो जब 7 दिन और 7 रात के बाद में संवर तक बादल पूरी तरह से थक गए और एक एक बूंद पानी समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं और बरसाने के लिए, मुसल तो दूर रह गया, बूंद भी नहीं बची, बूंद धार भी नहीं बची, मुसलधार कैसे हुआ। तो संवर तक बादल हार गए, इंद्र ने वज्र का हार आघात भी किया, वो भी किधर जाके अटक गया एक जगह पे, वज्राघात। तो फिर इंद्र को समझ में आया कि अरे मेरी सबसे बड़ी शक्ति को इतने आसानी से परास्त केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है भगवान। और दिखता तो ये बालक है परास्त करने वाला, मतलब ये बालक ही भगवान है। ये जब उसको अनुभूति हुई तो बहुत डर गया, वो सीधा नीचे उतरा और दोनों तरफ से भगवान को नज़र मिलाने का प्रयास करते रहा। भगवान जो है वो देखते रहे, इधर से आ रहे तो भगवान वहाँ देखने लगे, फिर वो इधर से आया तो भगवान वहाँ देखने लगे। तो वो समझ में आया कि उसको भगवान अभी बहुत ही नाराज़ है, वो देखने के भाव में नहीं है। तो बहुत डर गया वो फिर सीधे स्वर्गलोक में अपने गुरु जी के पास गया, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने उनको बहुत डांटा कि राजा होकर भी तुमने भगवान की सेवा करने के बदले में भगवान की सेवा में बाधा डाली है, उनको कष्ट दिया है, उनके प्रियजनों को नष्ट करने का प्रयास किया है, तुम्हारा अपराध तो अक्षम्य है, तुम तो बच नहीं सकते इससे, अभी क्या करें। इंद्र रो रहा है डर के मारे, क्या करें पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, अगर आप उनके किसी प्रेमी भक्त के पास जाओगे और वो अगर आपको शरण लेगा, उसको दया आएगी और वो दया से आपको भगवान के पास ले जाएगा, तो फिर कुछ बात बन सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्व अगर हम करते ना, तो गर्व जो है ना वो कैसे भगवान तोड़ देते हैं, पूरा चकनाचूर बना देते हैं उसका। इतना बड़ा आदमी, पूरे ब्रह्मांड का देवताओं का राजा देवेंद्र, और वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और वो भगवान के गांव पर आघात करता है, तो भगवान को क्या बना देते हैं। देखो इतना बड़ा देवेंद्र जो है ना, वो नीचे आता है और देखता है कौन मेरे लायक भक्त है, इधर एक गाय के चरणों में गिरता है वो जाके। देखा जाए देवता तो बहुत श्रेष्ठ है ना, गाय तो गाय है, जानवर है, लेकिन गाय के चरणों में गिरना पड़ता है उसको। और गाय भी कैसी है, उसको डांट नहीं रही है कि तुमने हमारा अपराध किया, हमको नष्ट करने का प्रयास किया, अभी चले जाओ तुम दूर यहाँ से, हमसे बात मत करो, हम सब लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं, कोई माफ़ी वाफ़ी मिलने का चांस नहीं है आपको। तुरंत गाय ने स्वीकार कर लिया उनको, तुरंत ही। भक्त लोग जो होते ना, वो भक्तों की व्याख्या ऐसी होती कि वो तो हमको पता नहीं कैसे करते वो, लेकिन हमने सुना है वो सुना वो बता सकते हैं। कहते हैं भक्त लोग जो होते ना, वो उनके खिलाफ अपराध होने के पहले से अपराध को माफ़ कर देते, अपराध को लेते नहीं। कैसा करते मालूम नहीं, मैंने तो अभी तक किया नहीं, लेकिन भक्त लोग जो भक्त होते हैं वो ऐसा करते हैं। केवल सामने वाला व्यक्ति नम्र अवस्था से आ गया है, इसी भावना से सभी उसके अपराध भूल जाते हैं, उनके मन में करुणा जाग जाती है तुरंत। अपराध के बदला रिवेंज, प्रतिशोध, ऐसे भाव उनके मन में आते नहीं, तुरंत उनका करुणा का जो भाव है ना वो प्रधान रहता है। और करुणा का भाव प्रधान होने की वजह से वो तुरंत अपराध माफ कर देते हैं। तो सूर्य गाय ने तो तुरंत उनको माफ कर लिया और सीधे भगवान के पास ले गई वो। और क्योंकि सुरभि गाय उनको ले गई है, इसी भावना से भगवान ने सबसे पहले इंद्र की ओर देखा कि तुम भी कोई हो। भगवान ने कैसा किया कि तुम है ही नहीं, है ही नहीं मेरे लिए, देखा भी नहीं उनकी तरफ, निग्लेक्ट, ये सबसे दुखदायी होता है। आप बोलो, कुछ गाली दो, कुछ जोर से चिल्लाओ, कुछ डांटो, तो भी आपकी कीमत की जा रही है कि आप हो हमारे सामने। लेकिन आप हो और हम आपको देखते भी नहीं हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि आप जगत में ही नहीं हो, टोटल दुर्लक्ष, बहुत दुखदायी होता है। भगवान ने उसको सबसे पहले पूर्णता दुर्लक्ष कर दिया। फिर पहली बार देखा जब ही सुरभि गाय ने उसको प्रस्तुत किया, पेश किया भगवान के सामने। फिर भगवान से माफ़ी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। फिर भगवान ने कहा ठीक है, दोबारा ऐसे मस्ती मत करो। फिर इंद्र को वो लगा कि भगवान को कुछ संतुष्ट करना चाहिए, कुछ आनंद की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। अगर ठीक है, करो अभिषेक। लेकिन एक रोचक बात ना बृहद भागवतामृत में आती है। वो रोचक बात यह है कि भगवान साफ साफ बताते हैं कि उनको इन देवताओं के द्वारा पूजन और गौरव और प्रशंसा में जरा से भी रुचि नहीं होती। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ग्लोरी एंड प्रेयर्स एंड पश्चाताप ऑफ एनी डेमिगॉड्स। उनका मन तो उनकी सखाओं के साथ खेलने में लगा रहता है। वो बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं कि इनकी प्रार्थना सुनते रहूं, खड़ा रहूं, समय देते रहूं, उसके अंदर कुछ नहीं। उनका मन जो है हमेशा अपने बालकों के खेल में लगा रहता है। साफ साफ लिखा है बृहद भागवतामृत में। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, फिर पश्चाताप कर रहे हैं, फिर माफ़ी मांग रहे हैं। ये क्या है सब? मुझे मेरे खेलने में जाना है, बच्चे लोग खेलने में बुला रहे हैं और ये देवता प्रार्थना कर रहा है तो सुनना पड़ता है। मन तो खेल में है, कब प्रार्थना समाप्त होगी और कब मैं खेल में जाऊँगा, इस भाव से भगवान प्रार्थना सुन रहे हैं। लेकिन उनका दिल कहाँ है? दिल सखाओं में लिप्त है उनका। ठीक है, फिर भी ब्रह्मा इंद्रा ने अपने सभी देवताओं से उनके उनके लोक में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो लाने के लिए आदेश दिया, ले आओ। तो वरुण देव ने सिंहासन, रत्न सिंहासन लाया, वायुदेव ने छत्र लाया बहुत, हाँ इंद्र ने अपने ऐरावत को भेजा आकाश में और आकाशगंगा का पानी 5 सुंड में भर भर के कई बार लाया और ऐरावत कुंड में जमा कर दिया उसको। अप्सराओं ने जल लाया और अप्सराओं के कुंड में, कहते हैं 108 कुंड बनाए अप्सराओं ने। ऐसे बहुत सारे कुंड बनाए गए। फिर सुरभि गाय आई और आकाशगंगा के जल से और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया गया, बहुत ही भव्य तरीके से, ऐश्वर्यपूर्ण। रत्न सिंहासन, छत्र, बहुत सारे वस्तुएं ऐसी जो चकाचौंध ऐश्वर्य वाली, और भगवान का अभिषेक किया गया। तो भगवान को स्नान करके जो जल और दूध का पानी एकत्र हुआ उससे ये गोविंद कुंड बना है। गोविंद कुंड जो है भगवान का चरणामृत है। बहुत भव्य तरीके से, देवताओं के तरीके से भगवान का गोवर्धन के तले बैठकर बहुत सुंदर अभिषेक हुआ। फिर इंद्र ने घोषणा कर दी कि आज से हमारे भगवान गोविंद नाम से जाने जाएंगे। तो इंद्रियों के स्वामी हैं और गाय के स्वामी है और भूमि के भी स्वामी है, और फिर वही गोविंद यहाँ पर विराजमान है मंदिर में। ये सब विग्रह बज्रनाभ ने बनाए हुए। तो अभी सुंदर बात उसके बाद में आती है। ये सब अभिषेक होता है तो सब देवता अपने प्रणाम करके, ब्रह्मा आदि देवता सब लोग आते हैं ना, इंद्र का अभिषेक और लेकिन सबके उपलक्ष्य में हुआ है तो इंद्र सबको बुलाते हैं, सब लोग आ जाते हैं देवता लोग, और ब्रज में आने का लाभ उठाते हैं, भगवान का ब्रज का दर्शन भी करते हैं, अभिषेक का दर्शन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, सब लाभ लेते हैं और सब चले जाते हैं। लेकिन सिंहासन, छतरी, पूजा का साहित्य सब छोड़ के जाते हैं। उस समय कुछ कुछ बाल बाल जो है वो छुप छुप के देखते रहते हैं क्या हो रहा है। तो जाते हैं और बाबाओं को सब बताते हैं, अरे ऐसे हुआ, वो उधर एक आदमी था, उसके ऊपर शरीर में इतनी आँखें थी, सब जगह आँखें ही आँखें थी। क्योंकि इंद्र ने ना, गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, हाँ क्या नाम था उसका, अहिल्या देवी, उसका अपराध किया था एक बार, तो उसको शाप मिला था कि तुम्हारे सबके सब शरीर में आंखें ही आंखें होंगी। तो वो था इंद्र, सब जगह आंखें थी उसकी। तो बच्चा लोग वर्णन कर रहे हैं, एक था वो बहुत आंखों वाला था, एक पांच सिर वाला था, एक चार सिर वाला था, ऐसा किया वैसा किया, सब अपना भाषा में बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कन्हैया को आके मिले, क्योंकि तब तक अभिषेक हो रहा था तो बड़े बड़े लोग थे ना, तो कन्हैया के पास जा नहीं पाए वो लोग। जब वो सब चले गए तो वो अपने कान्हा के पास में आए और बोले कि हम भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अभिषेक उन्होंने एक पत्थर की शिला पे उनको बिठाया, पीछे एक शिला रखी टेकने के लिए। अपने घर से दूध लाया, पानी लाया और बड़े प्रेम से भगवान का अभिषेक किया। फिर भगवान बताते हैं बृहद भागवतामृत में कि जितना आनंद देवताओं ने दिया उससे करोड़ों गुना आनंद जो है भगवान को बाल बालों के अभिषेक में हुआ। कितनी बड़ी बात है देखो, इसका मतलब ये है कि भगवान ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान शुद्ध सरल प्रेम से प्रेम करते हैं, निरपेक्ष भावना से प्रेम करते हैं। उनको कोई भी ऐश्वर्य जो है, कोई छतरी, कोई सरतर सिंहासन, कोई ऐश्वर्यपूर्ण सोने चांदी के अभिषेक की वस्तुएं प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उनको प्रेम से किया हुआ, सादगी से भरा हुआ जो अभिषेक था उसमें कई गुना ज़्यादा आनंद आया। ब्रज का भाव यही है, ब्रज में कोई भी आकर भगवान को ऐश्वर्य दिखाकर अपने रिझा नहीं सकता है, भगवान को यहाँ पर केवल प्रेम से रिझा सकते हैं। ब्रजवासी के पास कुछ धन दौलत नहीं थी लेकिन प्रेम बहुत था, इसलिए वो इतना प्रत्यक्ष दृष्टि से बता रहे हैं कि इंद्र के इतने बड़े ऐश्वर्यपूर्ण अभिषेक के सामने मुझे ग्वाल बालों का अभिषेक बहुत अच्छा लगा। उसी समय जब यहाँ अभिषेक हुआ और गोविंद नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान, इंद्र ने घोषणा किया, उसी समय गोपियों के बाने कानों में खबर आई कि भगवान का अभिषेक किया गया, कन्हैया का अभिषेक किया, गोविंद नाम से उसको स्थापन किया गया, तो हमें भी राधा रानी का अभिषेक करना चाहिए वृंदावनेश्वरी के रूप में, ब्रज की रानी के रूप में। तो फिर भगवान गोपियों ने राधा रानी को लेकर वो गए इमलीतला, और इमलीतला में पेड़ के नीचे सिंहासन रखते हुए सभी गोपियों ने राधा रानी का अभिषेक किया और उनको वृंदावनेश्वरी के नाम से घोषित कर दिया। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसे भगवान ही हमारे लिए स्थान प्रकट करते हैं, भगवान हम लोगों के लाभ के लिए सब लीला करते हैं, ताकि लीला करके तो चले जाएंगे वो, लेकिन कुंड तो यही रहेगा ना, सैकड़ों साल तक हम लोग आते रहेंगे, आचमन करते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, हाँ श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, घर जाके भी याद करेंगे। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, अपने गौलोक धाम की कृपा जो है पृथ्वी के धाम पर आकर प्रकट करते हैं और हम लोगों को उनके पास आने का मौका देते हैं, ताकि वो हमारा हृदय शुद्ध हो, उनकी कृपा उनके सान्निध्य दोबारा प्राप्त हो, इसलिए भगवान लीला करते हैं। इसी जगह पर इस कुंड के किनारे माधवेंद्रपुरी एक बार आए थे और बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी का एक नियम था। माधवेंद्रपुरी ये अभी 500-600 साल के आगे होंगे, आज से 500-600 साल के आगे की बात है, पीछे की बात है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, तो वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं वो 1500-1486 में उनका जन्म हुआ, तो 100 साल आगे पकड़ लो, 13वीं सदी में उनका शायद आविर्भाव होगा। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो कल्पवृक्ष का अवतार थे, गौलोक धाम के कल्पवृक्ष का अवतार थे, और उन्होंने ही सबसे पहले माधुर्य भाव का प्रस्तुति किया है, और माधुर्य भाव के प्रस्तुति के रूप में राधा रानी के तत्व को भी उन्होंने प्रकट किया है सबसे पहले। उसके बाद में उस तत्व का विकास हुआ है, उसका पूजन शुरू हुआ है। तो माधवेंद्र पुरी जी का भजन भजन बैठक जो है वो राधा कुंड में भी है, और वो घूमते भी थे सब जगह भजन करते करते। एक समय यहाँ बैठे थे, उपवास कर रहे थे। उनका एक नियम था कि वो कभी भी मांगते नहीं थे किसी से, दूध दो, रोटी दो, सब्जी दो, कोई दे दिया आके अपने आप तो ही खाते थे। ऐसा उनका अजीब व्रत था। हाँ, तो यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं लेकिन कुछ खा नहीं रहे, कुछ मांग नहीं रहे। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो ग्वाल बाल बन के आते हैं और बोलते हैं कि अरे बाबा भजन कर रहे हो? वो जो आगे कपड़ा धोती है औरतें, वो बता रही थी कि बाबा कई दिन से भजन कर रहा है, कुछ खाता पीता है नहीं। हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता, जो भी भूखा रहता है उसको मैं जाके दूध देता हूँ। तो मैं आया हूँ दूध लेके, दूध पियो, भजन करो, और आप दूध पियो तब तक मैं लौट के आता हूँ मटका लेने के लिए। ऐसे दूध दिया और चले गए। फिर वो दूध पिया तो वो ऐसा स्वाद आया, ऐसा अनुभव आया, दिव्य अनुभव, शरीर के रोमांच खड़े हो गए। इतना स्वाद आया कि वो मटका भी खाया टुकड़े करके, इतना स्वाद आया। पहले ढूंढते रहे वो कहाँ है लड़का, लौट के आएगा, लड़का तो गायब हो गया। तो उसी भाव में उसरस हो गए। रात को सपनों में बालक आए, गोपाल, दर्शन दिया उन्होंने और कहा कि सुबह मैं ही आया था आपको मिलने के लिए, मैं यहाँ पर गिरिराज के अंदर शिला में हूँ, मुझे आप निकालो बाहर और गिरिराज के ऊपर स्थापना करो मेरी। तो माधवेंद्र पुरी स्वप्न में जागते हैं आनंद से भर विभोर होकर, और ब्रजवासियों की सहायता से फिर उसर बहुत प्रेम से खुदाई करते हैं, वहाँ पर उनको गोपाल जी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब ये गोपाल जी की मूर्ति जो है ना, ये बज्रनाभ ने बनाई हुई है, कालांतर में वो लुप्त हो गई है और गिरिराज जी के अंदर चली गई। फिर भगवान ने स्वप्न देकर अपने आप को प्रकट किया है माधवेंद्र पुरी के माध्यम से, और फिर माधवेंद्र पुरी बहुत सुंदर तरीके से गिरिराज जी के ऊपर, आगे हमने जो संकर्षण कुंड देखा ना, वो संकर्षण कुंड के पीछे जो गोवर्धन पर्वत है उस पर एक सफ़ेद रंग का मंदिर है, वहाँ पर गोपाल जी को स्थापन किया उन्होंने, और धूमधाम से उनके लिए अन्नकूट बनाया जब स्थापन किया, क्योंकि उनका ऐसे स्वरूप था, बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन धारण किया हुआ ऐसे उनका स्वरूप था। तो गिरिधारी भगवान है श्रीनाथ जी महाराज गोपाल जी, तो उन्होंने अन्नकूट जैसे ही किया ना, तो ब्रज के सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बोले हमको भी करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है। तो कहते हैं कि एक साल तक तो रोज किसी न किसी गांव के तरफ से अन्नकूट चलता रहा, भव्य उत्सव रोज एवरीडे बहुत धूमधाम चलती रही। गोपाल जी के आने से ब्रज में बहुत चेतना आ गई। उसके बाद में दोबारा गोपाल स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से पत्थर के अंदर था, तो बहुत गर्मी हो गई है मुझे, मुझे चंदन का लेप कराऊं, मलय देश में जाओ वहाँ पर चंदन का लेप, चंदन लेके आओ और मुझे उसका लेप होगा तो शांति प्राप्त होगी, ठंडक प्राप्त होगी। तो तुरंत उन्होंने अपनी सेवा जो है किसी योग्य ब्राह्मण को सौंप दी और वो स्वयं पैदल चले। ऐसा नहीं कि हम सेवा करते रहे और किसी को भेज दिया आप लेके आओ, खुद आदेश प्राप्त हुए तो खुद चले गए। और बहुत दूर तक जाके उन्होंने लकड़ियाँ चंदन की इकट्ठा की, और वो रेमुना गांव में जब थे ये सब इकट्ठा करके, तो रेमुना गांव में फिर बैठे थे भजन करते हुए। जब गोपाल उधर रेमुना जी में गोपाल जी थे, उनका अभी भी मंदिर है, कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने उनको अपने हाथ से बनाया है, अपने बाण के नोक से पत्थर को रौंदकर कर उन्होंने प्रभु रामचंद्र ने श्री साक्षी गोपाल का मूर्ति बनाया हुआ है। तो उनको एक विशेष खीर अर्पण करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि खबर फैल गई थी कि उनको पता चल गया कि इस मंदिर में जो खीर प्रसाद लगता है ना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो उनके मन में ऐसा विचार है कि मैं भी थोड़ा चख लूँ ताकि मेरे गोपाल के लिए बनाऊँ। तो उन्होंने पुजारी के पास जाके बोला खीर है क्या आपके पास? तो पुजारी ने कहा कि अभी भोग लगना बाकी है। तो इनके बहुत अपराध लगा कि मैंने बहुत अपराध किया, अभी तो भोग लगा भी नहीं, मैंने खाने की इच्छा किया, मैं बड़ा अपराधी हूँ करके दूर जाके जंगल में बैठ गए, पश्चाताप करने लगे, रोने लगे और भजन करने लगे। उसके बाद तो खीर का भोग लगा गोपाल जी को, कुछ 11 बर्तन में भोग लगता है। तो जब पर्दा खुला, दर्शन ये हो गया ना, घंटी बजी, भोग लगाया, तो उसके बाद में पुजारी के स्वप्न में गोपाल जी आए और उन्होंने बोला कि आपने तो 11 बर्तन लगाए थे भोग के, खीर के, लेकिन 10 ही ले गए आप, एक मैंने मेरे पैर के पीछे छुपा के रखा है, क्योंकि तो मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं रेमुना में, वो मुझे, मैंने उनके लिए छुपा के रखा है, आप उनको गांव में जाके ढूंढो, मिलेंगे आपको, उनको ये पात्र जो है खीर का वो अर्पण करके आओ। तो पुजारी बीच रात में जग गए, बहुत आनंद हुआ उनको कि ऐसा कोई भक्त है जो आया हुआ है, इसके लिए स्वयं गोपाल जी ने अपने हाथ से खीर का एक पात्र छुपा के रखा है और मुझे आदेश भी दे रहे हैं उसको जाके दे के आओ। तो रात को ही वो स्नान होकर के अंदर चले गए, देखा तो भगवान के पैर के धोती के पीछे एक पात्र खीर का छुपा के रखा है। तो विश्वास भी हुआ कि सपना कोई असत्य नहीं था, सत्य था। तो वो पात्र लेकर ढूंढ रहे हैं रात को ही, अर्ली मॉर्निंग, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो ढूंढते ढूंढते गांव में कोई मिला नहीं, तो गांव के बाहर जाकर, वेशी के बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, रो रहे थे, आवाज़ सुनाई पड़ी। तो फिर वो मिले उनसे, आप माधवेंद्रपुरी हो? हाँ, मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। वो दंडवत करने लगे उनको, आप इतने महान हो कि आपके लिए गोपाल जी ने स्वयं खीर का पात्र चुनाया है, ये वो खीर का पात्र मैं देने आया हूँ, लीजिए आप। तो उन्होंने भी वो खीर खाई तो उनको दिव्य अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ और वो पात्र भी खा लिया उन्होंने इतने प्रेम से। इसलिए वो गोपीनाथ, गोपाल जी का नाम क्या हुआ, नहीं गोपीनाथ, गोपीनाथ जी, सॉरी मैं भूल गया, खीरा चोरा गोपीनाथ, वो गोपीनाथ जी का विग्रह, सॉरी था, उसका नाम गोपीनाथ है और प्रभु रामचंद्र ने उसको बनाया है। उसके बाद उसी वही गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए माधवेंद्रपुरी के, उन्होंने कहा आपने जो चंदन इकट्ठा किया है, मैं और गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है, गोपीनाथ जी और मैं एक ही हूँ। तो वो जो चंदन लाए हैं उसका चंदन का लेप मुझे आप यहीं पर कर दीजिए और गोपाल के रूप में मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वही रहकर उन्होंने वो चंदन का लेप जो है वो गोपीनाथ जी को कराया, गोपाल जी को नहीं, गोपीनाथ जी को कराया, गोपाल जी के उपलक्ष्य में गोपीनाथ जी को कराया। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भगवान अपने भक्तों को देते हैं। जब हृदय स्वच्छ होता है, कोई स्वार्थी हेतु नहीं होता है, भगवान के लिए समर्पित जीवन जीते हैं, तो ऐसे अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं और होते भी हैं। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने भी, जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उन्होंने बैठकर भजन किया हुआ है, उसको महाप्रभु की बैठक बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी बैठने बैठ के भजन किया हुआ है, राधा गोविंद जी का मंदिर है और गिरिराज के तलेटी की रज भी उपलब्ध है, गिरिराज के जो रज है, मट्टी है, साक्षात भगवान के प्रेम को देने वाली। लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ की रज को केवल स्पर्श करना, बस लेके मत जाना यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि इस गिरिराज की रज में कोई कंकड़ भी हो जो गिरिराज शिला के समान होते हैं, इसलिए गिरिराज की शिला को लेके जाना अपराध है। इसमें आदेश है आचार्यों का कि कोई गिरिराज की शिला उठाकर घर लेके जाना नहीं चाहिए, बहुत अनर्थ हो सकता है उससे। इसलिए आप प्रणाम कीजिए, लोटपोट हो जाइए, सर पे लगाइए, रजों का स्नान कीजिए, लेकिन घर में मत लेके जाना। और अद्भुत गिरिराज जी का दर्शन करना, प्रेम और भक्ति को देने वाले हैं। श्री गोविंद कुंड धाम की, श्री गिरिराज धरण हरि बोल, राधे राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।